हम देख रहे थे कि रमजान से हम क्या तवक्कुआत लगाएं और हकीकत में फिर उनमें से क्या चीजें हम हासिल कर पाते और क्या नहीं कर पाते, उस पे भी अल्लाह ताला से मुतमईन रहे। जो बात हमने इससे पीछे वाली नशिस्त में की थी, मैं उसका खुलासा कर देती हूँ। सबसे पहली चीज ये थी कि जब हम कोई ऐसे हदफ बनाते हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते, तो उससे हमारे दिलों में मायूसी आ जाती है। तो उसका इलाज क्या है कि हमें छोटे छोटे हदफ बनाने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट रखिए ताकि फिर उनको पूरा भी कर सकें, अपनी छोटी छोटी कामयाबी पे, अचीवमेंट पे खुशी का इजहार भी करें। उससे इंसान को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो चीज़ आप खुद से कमिट करें फिर उसको हर मुमकिन निभाएं। दूसरों से बहुत ज़्यादा जिक्र करने की बजाय खुद से लिख लिख कर अपने टारगेट बनाएं। आप देखिए कि पहले दौर के लोग कहते थे कि जब खाना पकता है तो ढक्कन को बार बार नहीं खोलते। पकते चावलों का ढक्कन बार बार खोल दिया जाए तो बाज दफा दम सही नहीं आता। इसी तरह हम नेकियों के बाज इरादे और प्लान्स को जब बहुत ही खोल खोल कर लोगों के सामने रखते हैं, खुशी भी होती है, जज्बात भी होते हैं, तो नजरे बद भी लगती है और अल्लाह ताला फिर हमारा इम्तिहान भी लेता है। तो जितने भी अहदाफ हैं अमली तौर पे जिन लोगों के साथ मिलकर आपने हासिल करने हैं, उनसे जिक्र तो ज़रूर करें। लेकिन अब अपनी दोस्तों में, महफिलों में, फेसबुक पे, मैंने ये सोचा इस साल मैं ये करूँगी, मैंने इस साल का ये गोल बनाया, इस तरह ना करें। छोटी छोटी बातें छुपाई रखें, आप देखेंगे कि जो खैर आएगी वो खुद बहुत दूसरे लोग भी देखेंगे। फिर इसी तरह से आप एक और छोटी सी चीज़ अपने जहन में रख लीजिए कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हम उस महीने में अपनी ज़िंदगी को, अगर बाकी रमज़ान के दिन, यानी रमज़ान के बगैर जो दिन है उससे बहुत मुख्तलिफ पाते हैं, तो ये ख़तरे की अलामत है। इसका अंदर कि हमारी आम रूटीन लाइफ जो है वो ईमान वाली लाइफ नहीं है। लेकिन अगर 19-20 के फ़र्क के साथ हम जीते हैं तो इट्स ओके, ये नॉर्मल है। थोड़ा बहुत खाने के वक्त को इधर उधर कर लेना ही काफ़ी है, बाकी चीज़ों का रोज़ा होने या रोज़ा ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। गुनाह से वैसे भी रोज़ा रखता है इंसान, गीबत से वैसे भी रोज़ा रखता है, बाकी चीज़ों से भी रखता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि हमारा हदफ क्या है, कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और उनमें से अभी तक हमने जिस चीज़ पर डिटेल से बात की है वो गुस्सा। गुस्से पे काबू पाने वाला अपना स्टीयरिंग अपने हाथ में रखता है। याद रखिए वो जहाज़ जो 300 पैसेंजर्स के साथ जा रहा होता है, सिर्फ किसी एक हाईजैकर के कनपट्टी पे पिस्टल रखने की वजह से उसका रुख मुड़ जाता है। अब वही पायलट जो अभी बहुत अच्छे इत्मीनान के साथ दूसरों को उनकी मंजिल की तरफ लेके जा रहा था, अब वो खुद किसी के इशारों में आ जाता है। गुस्से पे काबू पाना या ना पाना, उसकी मिसाल इसी से रखें कि हम अपना कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं। और गुस्से पे जब काबू पाना हो और मुश्किल लगे तो दो तीन टिप्स ज़रूर आजमा लें। पहली बात है कि गुस्से के दौरान शीशा देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि दूसरों के दिल पे क्या गुजरती है। दूसरी बात, अपने घर में से ही किसी को कह दें, बच्चों में से या बड़ों में से। अब तो आसान भी बहुत है कि जब मैं गुस्से में बोल रही होती हूँ ना तो मेरी रिकॉर्डिंग कर लो और बस वो मुझे ही भेजना। फिर आप यकीन करें अगर आप अपने फेस एक्शंस देख लें और अपनी बोली हुई बातें दोबारा सुन लें, तो एक तो आपको अपने घर वालों के दिल की कैपेसिटी का पता लग जाएगा कि हमारे बच्चों के दिल कितने मजबूत हैं जो ये देखते हैं और जो बर्दाश्त करते हैं। यकीन करें हम इतने खौफनाक लग रहे होते हैं उस वक्त, बाद में कहते हैं बस वो मैंने गुस्से में कह दिया था। तो गुस्से में तो कहेंगे ही, इसका इलाज वो सब बातें। इस पर एक बहुत ही खूबसूरत हमने वर्कशॉप की थी एंगर मैनेजमेंट के नाम पे, पुरानी वेबसाइट पे उसकी ऑडियोज़ भी मौजूद थी। अब मुझे नहीं पता अभी तक आई या नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगी जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। तो उसमें बहुत डिटेल से बात की थी, एक एक स्टेप के ऊपर लंबी डिटेल थी। कभी भी आपको वो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग तो आप सुने, और इस पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अब हम चलेंगे दूसरी चीज़ पे, बुरी आदत में जो हमारी चीज़ें हैं। बाकी गोल आप खुद बना लें, मैंने सिर्फ आपको आज गुस्से पे काबू देना है। बाकी आपका दिल चाहता है तो आप गीबत से भी थोड़ा सा परहेज कर लें, और इसी तरह से आते तो बुरी सारी बुरी होती हैं, कुछ ना कुछ कर लें। इस रमज़ान में हमने पाक साफ होना, अपने दिल को इस बात का एहसास दिलाए कि ये मेरी ज़िंदगी का शायद आखिरी रमज़ान हो। चलिए 3 सेकंड तक हम सब सोचते हैं, हमारे प्यारों में, हमारे रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, कुलीग्स में कौन पिछले साल था और अब नहीं है। और अभी भी किसी को नहीं पता कि आगे जो दिन है उसमें क्या खबर आती है। अपने लिए इस रमज़ान को अपनी बख्शिश का महीना बनवा लें, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس میں اتنی نیکیاں نہ کرے کہ اللہ کو راضی کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور آپ کی اس دعا پہ جبرائیل علیہ السلام نے آمین بھی کہا ہوا ہے. معروف روایت ہے تین سٹیپس پہ جا کر ایک ایک بات کرنے والی, اس میں سے ایک یہ تھی. تو کیا میں بدبخت رہ جاؤں گی؟ یہ تو ہیں ہماری بری عادتیں نکلنی. یا میں ایک چھوٹا سا آپ کو عمل بتا دوں جس کو بہت ہی کامنلی ہم جانتے ہیں, تزکیہ. تزکیہ کا عمل جو ہوتا ہے نا, جیسے اب یہ غصہ اپنا نکالنا ہے, بری عادتیں ختم کرنی ہے, اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ ڈیول ایکشن ہے, دوہرا عمل ہے. اچھی باتوں کو انہینس کرنا اور بری باتوں کو ریڈیوس کرنا, یہ ہے تزکیہ. بس آپ دیکھیں کہ ایک کسان ہے نا, وہ زمین کھودتا ہے, بیج ڈالتا ہے, پھولوں کے بیج بھی ڈال رہا ہے, کوئی پھلوں کا بیج بھی ڈال رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جڑی بوٹیاں نا اس کو بھی نکالتا ہے. تزکیہ کے عمل میں صرف نیکیوں کو آگے لانا نہیں ہے, برائیوں کو بھی روکنا ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہوں گی میں, کچھ لوگ نیکیوں میں آگے بہت بڑھتے ہیں, نیکیوں میں, خاص طور پہ پھر عبادات, ورشپ, الحمدللہ فرائض سے بڑھ کر سنتوں پہ آتے ہیں, سنتوں سے نوافل پہ, پھر فجر سے اشراق پہ, رات کی نماز سے تہجد پہ, الحمدللہ 5 سے 7 نمازیں ان کی ہونے لگتی ہیں, اس پہ بھی اور سے اور, بٹ وہ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑتے. یہ نہیں بات بنتی. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کوئی آپ کو زمزم پیش کرے لیکن گلاس چکنا ہو, اس کے اندر سالن گرا ہو, دل کرے گا پینے کو؟ بس لوگ کوئی درس نہیں چھوڑتے, کوئی اچھی محفل اٹینڈ کرنا نہیں چھوڑتے, لیکن گھر میں آ کے ملازموں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ تلخ نوائی نہیں چھوڑتے. میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس کر کے آگے چلتی ہوں. اگر تو زندگی میں آپ نے دین ہی کو اپنے لیے اپنا تعارف بنانا ہے کہ لوگ آپ کو دین کے نام سے جانیں, اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ اللہ کے نام سے پکارے, ان کی یاد ہی تب آئے جب کوئی اللہ کی بات کرنی ہو, تو پھر آپ کو اپنا اخلاق اور اپنا کردار بڑا خوبصورت دکھانا پڑتا ہے, ورنہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. آپ اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے, اس بات پہ کہ اللہ لوگ مجھے دین کے نام سے جانتے ہیں تو میری ہر چیز میں خوبصورتی کرتے ہیں. الحمدللہ اس پہ عمل کرتے جائیں گے, ایک وقت آئے گا نکھرتے ہی جائیں گے. بہت ساری سسٹرز ہیں وہ وقتی صفائی کرتی ہیں, اگلے دن گھر پھر گندا ہو جاتا ہے کیونکہ چیزیں ادھر ادھر چھپائی تھیں, ضرورت کے لیے نکالنی پڑی, پھر گھر پھیل گیا. ایک وہ صفائی ہوتی ہے جو ڈیپ ڈاؤن کلیننگ ہوتی ہے, الماریاں بھی صاف, ریکس بھی صاف, کپڑے بھی دھلے, استری, وہ گھر 10-12 دن تک صاف رہے گا. آپ نے میں نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے, کیونکہ اپنی برائیوں میں سے اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہ کیا تو بات نہیں بنے گی. اسی سیریز میں ہمارا ایک لیکچر ہوا ہے جس میں دل کی صفائی, رمضان اور دل کی صفائی میں بھول نہیں رہی, تو یہ پیرس کا پہلا لیکچر تھا. تو آپ لوگ کو مسنگ لیکچرز ایک ایک کر کے بھی سن لیجیے, بہت سارے دن ہیں. پہلا ہی لیکچر یہ تھا کہ رمضان کے روزے تو رکھیں گے لیکن دل کا برتن گندا تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک برائی پلٹاتے جائیں گے. ذرا سی ہمت ہے اور گھر والوں سے اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, تو پھر ان سے پوچھئے میری کیا عادت بری ہے. بہت ساری عادتیں ہمیں خود نہیں پتہ ہوتی لیکن ہمارے پیاروں کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن وہ مروت میں یا ہماری ناراضگی کے ڈر سے وہ ذکر نہیں کرتے. پوچھ لیجئے, مجھے بتائیں. بعض لوگ اونچی بہت بولتے ہیں, بعض تیز بولتے ہیں, بعض آنکھیں بہت کھولتے ہیں, بعض ایموشنل بہت ہوتے ہیں, اوور ایکٹ کرتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو اچھے طریقے سے ایک دوسروں سے پوچھ کے تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اب ہم چلیں گے دوسری چیز پہ جو بہت اہم ہے. الحمدللہ دل کے برتن گناہوں سے پاک ہوتے گئے, اب اس کو سجانا ہے. یہ ایسی جیسے آپ کا گھر صاف ہو گیا ماشاءاللہ, دیواروں سے جالے اتر گئے, ویکیوم کر لیا, آپ نے واش روم صاف کر دیے, اب کیا کرنا ہے؟ سجانا ہے, ڈیکوریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے لیے گول بنانا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے اور دعائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور پکار کا جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. شرط یہ کہ فل یستجیب لی ول یومنو بی لعلہم یرشدون, تم بھی تو میری دعوت کو قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم بھلائی پالو. تو کیا پتہ چلا کہ ہم نے اس سال رمضان کو اس سوچ کے ساتھ گزارنا ہے کہ میری زبان پہ اکثر ذکر ہوگا. بولیے ہی نا. دیکھیے ایک خاتون کا واقعہ آپ سن چکے ہیں, نہیں سن چکے تو لیکچر کا نام بتا دیتی ہوں, اللہ کی کتاب اور میری کتاب. قطر میں یہ لیکچر ہوا تھا ہمارا کہ وہ خاتون جو عبداللہ بن مبارک کو ملی, 8 دن کے سفر کے دوران ہر سوال کے جواب میں وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم, یہ کہتی ہیں سلام ان قولم رب رحیم. کام آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یعنی مسجد اقصی تھی. کام ادھر کدھر ہو؟ کہنے لگی ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ, سمجھا دیا کہ میں بھٹکی ہوئی ہوں. بات سمجھ گئے؟ ہر سوال کے جواب میں بولتی ہیں. اور وہ میں نے اس لیکچر میں پورا پڑھ کے سنایا تھا کہ مکالموں میں کیا بول رہی تھی خاتون. جب بیٹوں سے ملے کہنے لگے کہ عجیب عورت ہے آپ کی ماں, 8 دن سے میں اس کے ساتھ جو بات کرتا ہوں اس کے جواب قرآن سے دیتی ہے. تو کہنے لگے کہ آپ 8 دن کی بات کرتے ہیں, ہم نے پچھلے 40 سال سے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں سنا. یہ ذکر کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے. جتنی کوشش کریں گے اللہ اتنی مدد کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اللہ کا وعدہ ہے, تم مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. تو آپ نے میں نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا ہے. دیکھیے کہنے کو یہ باتیں ہیں, پر آپ نے اگر اس کو اپنی زندگی میں رکھا تو آپ کا کردار کتنا خوبصورت ہو جائے گا ابھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بس آپ دیکھیے کہ زبان ذکر سے تارا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذکر کریں آپ, اس کا کوئی خاص طریقہ؟ دیکھیے جو جذبے جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوس کریں وہ ذکر کریں. کوئی خوبصورت چیز دیکھی, اللہ کی بڑائی کا احساس ہوا, سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی اپنی ایسی چیز کا خیال چلا گیا جس کو واقعی نعمت سمجھتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. اپنا کوئی گناہ یاد آ گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام ہو گیا اور لگا کہ آپ تو بہت بڑے بن جائیں گے, تو لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی نے آپ کی تعریف کر دی, نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اپنی زبان کو ان کلمات سے تر کریں. آپ کے گھر کے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا دوسرے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماما کو فالتو نہیں بلانا, ماما کچھ پڑھتی ہیں, کچھ بول رہی ہیں. کبھی دل میں کبھی زبان پہ, قیامم وقعودم علی جنوبہم. اور ساتھ ہی اگر اس میں یتفکرون فی خلق اللہ, یا اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کی عادت ڈالیں, آپ کا رمضان بہترین رمضان ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو؟ گول تو ہے, کریں کیسے؟ یعنی ذکر اور دعاؤں میں رہنا ہے. اور آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی دعائیں, آپ اور میں اگر ساری پڑھنے لگ جائیں ہمیں کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ دیکھیے کہ پوری نماز دعائیں ہیں نا. آپ دیکھیں نماز شروع کرنے کی دعا, دعا استفتاح, قیام کی دعا, پھر اسی طرح آپ دیکھیے رکوع کی دعائیں, رکوع سے اٹھنے کی دعائیں, سجدے کی دعا, دو سجدوں کے بیچ کی دعا, تشخد کی دعا, یہ دعائیں تو ہیں. اگر آپ دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں, اور یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ جب آپ ایک اسپرچل موڈ میں آئیں گی, شعور بیدار کر لیں نا تو کام ہو جاتا ہے. جیسے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے یہی کچھ کرنا ہے. آپ آسان سے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ میرا اس سال 30 دن کا اعتکاف ہے. کس چیز میں؟ جم کے بیٹھنا ہے عبادت کے لیے. کیسے بیٹھنا ہے؟ اسی طرح سے کہ اپنی توجہ کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینا. فالتو باتیں, فالتو محفلیں, فالتو کام, ہیٹ لیسنس, اس سے اپنی جان چھڑا لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کریں کیا کہ اپنے آپ کو تیار کریں. سب سے پہلے تو اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے. ایک دعا جو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز پڑھتی بھی ہوں گی اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد فوراً دعا کیا کرتے تھے؟ ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں, اور عبادت کو خوبصورت طریقے سے کر سکوں. پہلے تو آپ دعا مانگیں کہ اللہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان کر دے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ किताब से देख ले चलें, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ुबानी पढ़ने से कोई लाजमी नहीं है कि आप ज़रूर ज़ुबानी पढ़ें, लेकिन शुरू में आप अपने पास दुआओं की किताब रखें। मेरी फेवरेट बुक जो है वो हिस्नुल मुस्लिम है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात जो होते हैं उनकी दुआएँ जो है वो मिल जाती हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हाथ में एक छोटा सा बैग होता है मुमा नहीं बंदे के, जिसके अंदर वो अपनी ज़रूरी चीज़ें रखता है। मैंने जब ये दुआएं याद की ना, तो वो बुक हमेशा मेरे हाथ में होती थी। मुझे बैठ के याद नहीं करना पड़ता, शऊर से तवज्जो से बैठकर एक चीज़ को 2-4 दफ़ा पढ़ूँ याद हो जाती है। आज भी मुझे वो थैला, वो बैग हाथ का याद है, जिसमें चंद ज़रूरी चीज़ें हाथ में होती थी, उसमें हमेशा ये बुक होती थी। नमाज के लिए खड़े होना, एक दफ़ा उस बुक को खोल कर उसमें से दुआएं पढ़ लेती थी। बस आप देखिए कि उस बुक में सजदे की तकरीबन 9 दुआएं हैं, तो तशहुद की शायद 10 दुआएं हैं। तो जिस नमाज के लिए खड़े हो ना, पहले से सोच लेना कि मतलब सुब्हुन को दूसरों रब्बुल मलाइकति व रूह पढ़ूंगी। अब ये आप रुकू में भी पढ़ सकते हैं, सजदे में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने शुरू में ऐसे ही किया कि एक दुआ पढ़ी ना, तो उसी को रुकू में पढ़ा, उसी को सजदे में पढ़ा, याद हो जाती थी। और बिलीव मी, अगर नफिलों की नीयत से पढ़ें, खोल के भी देख लें, अगर आप इस साल इस रमज़ान के पूरे महीने में नमाज की कम अज़ कम 5-5 दुआएं भी याद कर लेना, एक एक मौके की, आपकी नमाज में हुसन आएगा। और याद रखिए, हम ये सारा क्यों करते हैं? मुझे बहुत डर लगता है इस बात से कि हमारी इबादत आदत ना बन जाए। इबादत जब आदत बन जाती है ना, तो उसका खुशू ख़त्म हो जाता है, फिर उसमें खुदू नहीं रहता। जैसे आज हमारे कल्चर में देख लीजिए, इफ्तारियां कराते हैं, आदत है। उसमें अपने रोज़े छोड़ देते हैं, 50 लोगों की इफ्तारी है आज, बेपर्दगी हो रही होती है, मगरिब की नमाज कज़ा हो रही होती है, और इसराफ हो रहा होता है। इतनी हड़बूंग मची होती है, क्या जी इफ्तारी करा रहे हैं, मैं तो नहीं अपना खाना किसी ऐसे को खिलाऊंगी कि 50 को मैं बुलाऊं, उसमें से 20 रोज़ेदार है, 30 बेरोज़ है, मैं तो नहीं इतना अपना नुकसान करूंगी। लेकिन अमूमन हम ख़ानदानों के नाम पे, रस्म और रिवाज के नाम पे ये करते हैं। फिर मैंने देखा बहुत बड़े बड़े होटलों में इफ्तारियों का रिवाज हो गया, और वहाँ जाकर फिर वो अपना प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना पड़ता है। बहुत बड़े होटल में किसी ने इफ्तारी रखी थी, तो वहाँ आप गए तो म्यूज़िक था, मुस्लिम मुल्क की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि इफ्तारी हो का वक्त करीब है, तो आप म्यूज़िक तो बंद करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे होटल के प्रोटोकॉल में यह है कि कुछ ना कुछ चलेगा, हाँ हम आपके लिए बांसुरी चला देते हैं। शऊर बेदार कीजिए, आप देखेंगे कि जितना अल्लाह को याद रखेंगे, कैसे याद रखना है, ये ज़ुबान पे जो जिक्र है ना, ये तो एक बात है, असल याद तो दिल में होती है। अगर आप और मैं अल्लाह सुबहान तआला को याद रखने की प्रैक्टिस करें कि मैंने भूलना नहीं है। वैसे आप देखिए कि आपको किन के नंबर्स याद रहते हैं, जिनको आप अक्सर कॉल करते हैं, कुछ को फेवरेट्स में डाला होता है, कुछ के आपकी हिस्ट्री के अंदर होते हैं, रीसेंट कॉल्स के अंदर होते हैं ना। आप अल्लाह ताला के साथ अपना शऊरी ताल्लुक़ पैदा करें। अब करें क्या कि आप रात को जल्दी सोएं। मेरा ईमान है कि जब हमारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी ना, उसमें बरकत बहुत होगी। बस आप देखिए कि इवन रमज़ान में भी इशा की नमाज के फौरन बाद सोने की कोशिश करें। आप जब रात के 5 से 6 घंटे भी पुरसकून नींद ले लेते हैं ना, तो फजर के लिए उठना कोई मुश्किल नहीं है। आपको शायद ये बात पता होगी कि रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप रात को तरावी पढ़ चुके हैं। पता क्यों नहीं, बहुत सारों को नहीं पता, तो याद रखिए रात को तरावी पढ़ ले, वितर छोड़ दीजिए। अगर आपको यकीन है कि आप पहले उठेंगे, आप जब आप सुबह में उठते हैं, चलिए 2 नफिल वजू के पढ़ लीजिए, लंबे पढ़ लें, उसके बाद बैठकर जिक्र शुरू करते हैं, कुरान पाक का एक सफ़ा पढ़ लें। और अगर आपको और अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे, सहरी से पहले या उसके फौरन बाद एक पारा पुरसकून अंदाज से पढ़ने की तौफीक मिल गई, और इस पे भी मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी, अच्छी आवाज़ का कुरान ही फ़ायदा देता है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको अपनी तिलावत में थोड़ा सा शुबा भी है ना, तो आप क्या करें कि किसी एक कारी की आवाज़ सिलेक्ट कर लें, जिनकी टोन आप मैच कर सकें, यानी कोई फास्ट होते हैं, कोई बहुत स्लो होते हैं, रिदम होता है ना। और आप चाहें तो Quran.com खोल लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप बाद में ले भी सकते हैं, एक से एक अच्छे कारी की आवाज़ आपको मिलेगी, उसको अपने पास सेव कर लें, उनका प्ले करें हल्की आवाज़ में, और आप साथ पढ़ें। हम अपनी क्लासेस में आजकल यही करते हैं कि जो लेसन स्टूडेंट्स ने पढ़ना होता है तो कारी साहब की आवाज़ चलाते हैं साथ, हल्का करके स्टूडेंट्स उसके साथ साथ पढ़ते हैं। आप अगर उस वक्त थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, और फिर वही बात है कि जिसका तर्जुमा सुना है वो पढ़े तो सोने पे सुहागा होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए, एक छोटी सी टिप, अपने फ़ोन का वाईफाई सिस्टम ऐसे वक्तों में बंद कर दें। मैं ये नहीं कहती कि पूरा महीना ही आप फ़ोन से कटे रहें, लेकिन ज़रूरत का तो रखें, अपने आप को खुद टेम करें। देखिए, आपने यहाँ आना था तो आप सीधे ही आए ना, बहुत सारी रोड्स इधर उधर होती हैं, आप नहीं गए क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना था। बाज़ लोगों को फ़ोन यूज़ नहीं करना आता, स्पेशली कुछ ऐसे सोशल मीडियाज, मतलब फेसबुक है, आप एक दफ़ा क्लिक करें पता नहीं आप कहाँ पहुँच चुके होते हैं। अगर आपको अपने ऊपर काबू है तो ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं देंगी, लेकिन अगर सिर्फ वॉन्डर ब्लाइंडली उधर देख, विंडो वॉचिंग हो रही है, ये क्या कर रहा है, उसने क्या डाला है, उसने क्या किया है, तो बाज़ दफ़ा आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। आप अपना लिमिटेड टाइम ऐसा रखें कि जिसमें आप वाईफाई बंद कर दें, ना फ़ोन, ना सोशलाइजिंग, ना बीच में कोई आपको तंग करे। ईशा की नमाज के बाद फ़ोन बंद, सो जाइए। तहज्जुद के वक्त उठें, तरोताज़ा होंगे, सहरी से पहले थोड़े से इज़कार करें, दुआएं मांगें, और उस वक्त अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फार करूँगा। सौफा का लफ्ज़ था, मुफस्सरीन कहते हैं कि सहरी का वक्त मुराद था। बहुत उस वक्त अल्लाह करीब होकर सुनता है, जो दुख सुख करने हैं उस वक्त अल्लाह ताला से कर लीजिए, रूहानी ताल्लुक कायम होगा। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आए होते हैं, उसके साथ अपने दुख सुख करें। जिसको एक दफ़ा अल्लाह ताला से बात करने की आदत पड़ गई, वो किसी से नहीं अब करेगा। ये भी याद रखिए, स्टैंडर्ड होता है हर एक का। कुछ लोग हर एक को बातें सुनाते हैं, अच्छा मुझे वैसे ना समझ लगते हैं, अपने से भी कमज़ोर बंदों को अपने गम सुना रहे होते हैं, अपने ही जितने इल्म वालों से मसले पूछ रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कभी अल्लाह से भी तो पूछ के देखें। जब आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम कर लेंगे, कोई दूसरा बंदा बीच में नहीं आएगा। अल्लाह से कहिए, अल्लाह मुझे अपनी आदत छोड़नी है, अल्लाह ताला मुझे गुस्सा छोड़ना है, अल्लाह ताला मैं तेज़ बोलती हूँ मुझे आहिस्ता बोलना है, मैं ऊंची बोलती हूँ मुझे ज़रा सा मध्यम आवाज़ से बोलना, मैं बहुत ही मध्यम बोलती हूँ मुझे ऊंची बोलना। इतनी छोटी छोटी बातें करें अल्लाह से कि जैसे बच्चे अपनी माँ से कर रहे होते हैं, आप फील करेंगे कि आपका एक कनेक्शन होगा, और ताल्लुक के बगैर बात नहीं बनती। नमाज भी नमाज नहीं है जब तक अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक नहीं होता। हुआ क्या कि आज हम बहुत इन्वॉल्व हो गए, इतनी सोशलाइजिंग पहले तो जाके करनी पड़ती थी, अब हमारे हाथ का फ़ोन काफ़ी है हमें दूसरों के साथ करने के लिए इन्वॉल्व, और करीब वालों का बाद जब हम हाल भी नहीं पूछ पाते। साथ वाले कमरे में हो सकता है कोई बीमार पड़ा हो, और हमें अमेरिका से ख़बर आ जाती है कि फलां बीमार है और हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, और उसके लिए दुआ करें। तो ज़रूरत है कि अपने आप को फोकस रखें, और जिक्र इसकार के लिए कोई सर्टन या सेट सिस्टम मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी से फिर वजीफे बन जाते हैं, आप खुद करें। जिक्र अस्कार में बेहतरीन जिक्र नबी सल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके दिल की हर धड़कन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बेहतरीन दुआ के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किस बात की अल्हम्दुलिल्लाह? इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह जो नेमतें दी हुई अभी तक तो उसका भी शुक्र नहीं अदा कर सकी। कसरत से जिक्र करें, हर मौके की दुआ पढ़ें, देख के पढ़ें। मसलन आप देखिए कि हम एक खातून को ज़रा सा डिस्कस करते हैं जो घर में ही रहती है। सुबह उठी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, फिर बैठे, अल्लाह के नबी पूरा बैठते थे, फिर बग़ैर वजू किए, इन फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख़्तिलाफ़िल लैल से लेकर लअल्लकुम तुफ़्लिहून एंड तक, यानी 10 आयतें सूरत आल इमरान की वो पढ़ ली जागते हुए। अब उठे, ज़ाहिर है कि मोस्टली लोग सुबह उठ के वॉशरूम में जाते हैं, दरवाजे तक पहुँचे, बोलिए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, साथ ही बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें, क्योंकि अगर अंदर वजू करना पड़ा तो ये बिस्मिल्लाह काफ़ी होगी। फिर आप लेफ्ट पाँव अंदर रखते हैं, अब सामने मिरर है उसमें भी नज़र पड़ती है, अंदर जाके पढ़ने के बजाय बाहर मैट पे खड़े और शीशा देखने की दुआ पढ़ लें। اللہم کما حسنت حلقی فحسن خلقی. اس کے بعد فارغ ہو گئے, باہر آئے, سیدھا پاؤں پہلے باہر آئے, غفرانک, اے اللہ معاف کر دے. چلیے ساتھ رکھے سنک پہ آپ وضو کرنے لگے, بسم اللہ, وضو کیا, وضو پورا کیا تو آسمان پہ نظریں کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ مجلنی من التوابین. مجھے بتائیے ابھی تو بیچاری جائے نماز تک نہیں پہنچی, کتنی دعائیں پڑھ لی, پھر نماز پڑھی الحمدللہ, نماز کی دعائیں, رکوع کی, نماز کے بعد کے اذکار, صبح شام کی دعائیں, قرآن کا ایک پارا صفحہ ہو گیا. اس کے بعد کچن میں آتی ہے, کس سے کام شروع کرنا ہے, بسم اللہ, فریج کھولی بسم اللہ, چولہا کھولا بسم اللہ. اب آپ دیکھیے ہر کام میں رائٹ ہینڈ کو استعمال کرنا. اب اتنے میں بچوں کے اٹھنے کا ٹائم ہے, بچوں کو اٹھایا, تیار کیا, جو بھی کیا, گھر سے نکلے, بسم اللہ توکل تو اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, گاڑی میں بیٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. باہر نکلے, کسی جگہ سے کوئی چیز لینی تھی, بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی, لا الہ الا اللہ سے آگے تک. مجھے بتائیے آپ کو دوسروں سے باتیں کرنے کا وقت رہے گا؟ کوئی چیز لینے لگے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, مناسب ہے نہیں, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شری نفسی. کوئی بڑی چیز لینی تھی تو گھر سے ہی سوچ کے یا موقع دے کر وہاں استخارے کی دعا پڑھ لی. کوئی سودا خریدا تو کہا اللہ اس میں نفع دے دے, نئی چیز خریدی تو اللہم انی اسلوک خیرہا و خیر ما جبلتہا لی واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا لی. اب آپ یہ سارے کام کرتے کراتے واپس آتے ہیں, کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے تو بڑے ہی اچھے کام کیے, تو کیا کریں گے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی بما یقولون وجعلنی خیرا مما یظنون. دوسرا آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. اتنی باتیں جو دن میں رب سے کر لے اس کو دوسروں کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. پھر اسی میں صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, پانچ نمازوں کے بعد نماز کے اذکار جو ہیں وہ پڑھ لیں, آپ کو عادت ہو جائے گی. ایک دفعہ دن میں کم از کم صبح والی یا شام والی میں ترجمے پہ غور کریں. اگر آپ کے بچے بھی اس ایکٹیویٹی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں, آپ محسوس کریں گے کہ بہت فائدہ ہوگا. تو پھر ایک خلاصہ جو آپ کو دیا ہے ہدف کے طور پہ, شعور پیدا کرتے ہوئے میکسیمم دعاؤں کا اہتمام کریں, ذکر, اذکار یا دعائیں. کوئی دعائیں اپنے لیے چوز کر لیجئے, میں نے اس مہینے میں یہ دعائیں یاد کرنی ہے, اور اس کا میری نظر میں بیسٹ طریقہ قرآنی دعائیں. کوئی دعا ان دعاؤں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی حالات کریٹ ہوں گے نا, قرآن کی دعا سامنے آ جائے گی. حضرت یعقوب کو یاد کر لے, اولاد کے سارے غم, ان کی دعائیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دین اور دنیا کی تکلیفوں کی دوری کا آپ کو علاج مل جائے گا اس میں. چلیے یہ بھی ہو گیا, اور کیا کریں؟ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اس قرآن کو نازل کیا. کیسے قرآن پڑھنے ہیں؟ پانچ قرآن پڑھنے ہیں. نمبر ایک, سننا, سننے والا قرآن. دوسرا, پڑھنا, پڑھنے والا قرآن. کیسے؟ ابھی آپ کو میں ریلیٹ کراتی ہوں. تیسرا, سمجھنے والا قرآن. چوتھا, نیکسٹ پہ چلیے, عمل تو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, غور و فکر. افلا یتدبرون القرآن, سورۃ محمد میں آتا ہے تدبر والا قرآن. پھر اس کے بعد پانچواں, ابلاغ, دوسروں تک پہنچانا ہے. اب سننا کہ پورے مہینے میں ایک قاری صاحب کا قرآن پورا سنیے. اس کا طریقہ مجھے بہت آسان لگتا ہے, آپ چاہیں تو اینڈ پہ میں آپ کو بھی دے سکتی ہوں. ایک ایپ ہے میرے پاس قرآن فون میں, ابھی دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کو آپریٹ کرنا بہت ایزی ہے, ایک دفعہ آپ سن کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. ایم پی تھری قرآن اگر آپ ایپ سٹور پہ جا کے لکھیں گے, آپ یہ دیکھیے الفابیٹیکلی, اگر میں یہاں کاؤنٹ نہیں ابھی کر پا رہی, لیکن میرا حال 200-300 قاریوں کی گرت ہے. اس میں جو آپ پلے کریں گے, جیسے اب جو میں اکثر پلے کرتی ہوں نا, یہ دیکھیے میں نے اس کو سیو کیا ہوا ہے, تو ڈاؤن لوڈس میں گئی, اور جیسے سورت کا حب, ایک کلک ہے نا. अब दिल करे सूरत हदीद सुनने को। ठीक है, आप भी अपनी खुद लिस्ट बनाएं। इसमें लिस्ट इतनी खूबसूरत बन जाती है, बाद में आप उस लिस्ट को क्लिक करते हैं, वो आपके लिए खुद ब खुद प्ले करता रहेगा। आप एक कुरान ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। और अगर उस वक्त सामने कुरान खुलाओ, क्या कहने उसके। तीसरा है अपने कुरान का तर्जुमा या जो उसका समझना है, उसका इलाज दौरा कुरान है। बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं, जिसका मर्जी सुने, जिससे आपको फ़ायदा होता है, लेकिन पूरे दिल से सुने। फिर इस तरह से आप देखिए कि जब आप दौरे कुरान के साथ सुन लेंगे, उसके बाद आप तदब्बुर करें। ये आपको नहीं आता, मैं गुमान से कह सकती हूँ, माफ़ कीजिएगा। 2016 में मैंने एक तजुर्बा किया था, मैं यकीन करें आज भी उसको इंजॉय करती हूँ। तरतीलुल कुरान 15 मिनट का कुरान था। हर दिन तरावी के बाद जो पारा वहाँ होता था, शुरुआत ऐसे हुई कि मैं कहीं पढ़ने जाती थी, सिस्टर्स सब मिलके हम पढ़ते थे, तो जब पूरा पारा होता था तो मैं उनसे इजाज़त लेकर कि आज के बारे में जो बात थी, सादा कुरान खोल लेती थी, वो जो हमारी कारिया होती थी उनके पास ही होता था लोगों को दिखाने के लिए कि ये कुरान है, और मैं तो उसको यूँ खोलती थी और बस उसमें मैं ऐसे सफ़े पलटती जाती थी, एक बात की फिर उससे अगली फिर तीसरी। इस नाम पर तरतीलुल कुरान का एक सेट बना हुआ है, ऐप के ऊपर तो है, वेबसाइट का मुझे अंदाज़ा नहीं है किधर है। ये है तदब्बुरुल कुरान। शुरू में 2-4 दिन वहाँ किया, बाद में कुछ गड़बड़ें हो रही थी टाइम की, मेरे लिए वो वक्त 15 मिनट टोटल मैं अपने घर में डाइनिंग टेबल पे अपना लैपटॉप सारा सेटअप करके बैठती थी और सादा टेक्स्ट मेरे सामने होता था। मैंने उसको इतने प्यार से पढ़ा, यकीन करें आप सुनेंगे तो आपको फ़ील होगा कि मैं अल्लाह ताला से बातें कर रही हूँ, मुझे फ़ील ये होता था। पूरे पारे की बातें सिर्फ 15 मिनट में, आप भी कर सकती हैं। आपको भी अरबी में मुश्किल लगता है ना, तो आपको मैं टिप दे देती हूँ, आप सादे तर्जमे वाला कुरान सामने रख लें और आप सिर्फ उर्दू उर्दू पढ़ती जाए। ये कहा है, अच्छा उसके बाद यकीन करें कि ये चीज़ें आपके अंदर जो मिठास पैदा करेंगी, कुरान से जो आपकी दोस्ती होगी और दिल दिमाग पे कुरान कुरान कुरान, क्योंकि ये आम रमज़ान नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको करना है। आप कह लीजिए कि जैसे कल मेरे मुँह से एक जुमला निकला, बाद में मुझे किसी ने कहा कि मैं तो ये ज़रूर करूँगी, कि आपने अपने घर का नाम कुरान क्लब, कुरान लॉन्च, कुरान रूम, कुरान हाउस रख दें, फिर हमारी नस्लें बदलेंगी, फिर हमारे घरों में कुरान कल्चर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज़ जिसको कभी ना भूलें, इस साल का अदब जो आप सबका पहले भी होता है, किसी एक जगह मिलकर तरावी पढ़ लें। मस्जिदों में इधर तो मुझे अंदाज़ा है माशाल्लाह, मस्जिद में भी बहुत अहतमाम होता है, हरी मस्जिद में होता है, आप अपने लिए कोई एक जगह चूज़ कर लें और कुरान खोल कर पढ़ें। आपके सामने टेक्स्ट हो, कुरान सुने, साथ पढ़ना नहीं है याद रखिए, और तर्जमे अला नहीं पढ़ना, सादा कुरान दूसरों को डिस्ट्रैक्ट किए बगैर पूरा महीना कुरान के साथ जोड़ें, आप महसूस करेंगे कि आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। तो 5 गोल दिए मैंने आपको टोटल। नंबर 1, अपनी इसलाह, बुराइयों को छोड़ना, जिसमें हमने एक बुराई बहुत ही लंबी डिस्कस की, गुस्से पे काबू। दूसरी बात हमने देखी, बोलिए, जिक्र, कसरत से जिक्र, दुआएं। तीसरी चीज़ कुरान के साथ एक गहरा ताल्लुक और कुरान को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ना, और फिर उसके बाद तरावी। यकीन करें अगर आप बहुत कुछ भी ना करें ना, ये 5 गोल अपनी 5 उंगलियों की ये टिप्स पे लिख लें, अपने लिए गोल बना के कैसा मैप सा बना लें, और जो काम करती जाए मैंने आज ये कर लिया, टिक टिक टिक, आपका टाइम भी मैनेज होगा। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बरकत दे। सुब्हानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु अलैक। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हम सब पे अपना रहम फरमा। अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिर औरातिना। अल्लाह हमारे पर्दे रख ले, अल्लाह हमारे ऐब ढांप दे, अल्लाह हमारी घबराहटों को अमन दे दे, या अल्लाह हमारे साथ अपनी ताईद और नुसरत शामिल कर दे। या अल्लाह सब साथियों के दिलों की जायज़ ख्वाहिशात अपनी रहमत से पूरी फरमा। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी से कोई खैर का काम ऐसा करके जाएं कि जिसका असर आने वाली नस्लों तक भी रहे। या अल्लाह हमें इस इंसानियत को, इस कम्युनिटी को बेहतरीन या अल्लाह खैर देने वाला बना दे। या अल्लाह जो साथी इस वक्त भी हमारे साथ बाहर से बैठे सुन रहे हैं, या अल्लाह उन सबको हमारी दुआओं में शामिल फरमा। या अल्लाह शर से बचा, हसद से बचा, नफरत से बचा, बड़े बोल से बचा, शैतान से बचा, बद नजरी से बचा। या अल्लाह हमें आजजी के साथ, या अल्लाह तेरे आजिज बंदे बनकर तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचाने वाला बना दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और आफियत दे, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो भी साथी अनसार अल्लाह हैं जो दिन रात इन कोशिशों में, या अल्लाह तू अपने पास उनको अजर दे। या अल्लाह हमारे तो हाथ भी छोटे, हमारा वक्त भी कम, हमारी ज़ुबान में ताकत नहीं, तो अपनी रहमत से उन सबको उनकी उम्मीदों से भरकर अता फरमा। या अल्लाह खैर भी हमें दे, दुनिया में भी हमें अपनी कोशिशों का नतीजा दिखा। हमारे ईमान हज़रत नूह की तरह नहीं है। या अल्लाह कहीं हम हिम्मत ना हार दें। या अल्लाह इस मुल्क में, इस शहर में, इस जगह पे भी बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अगर तूने हम सब को इस किताब की खिदमत के लिए चुना है तो या अल्लाह कभी हमारे कदम पीछे ना जाए। या अल्लाह ये पौधा अगर इधर लगा है तो या अल्लाह इसकी बहार भी दिखा। या अल्लाह हम सब को अपनी ज़िंदगियों में और अपने बच्चों को अपने बाद के लिए तैयार करने वाला बना कि हमने इस किताब की खिदमत करनी है। हमारे उस्तादों पर रहम फरमा, जहाँ भी कोई कुरान सुन्नत की खिदमत कर रहा है उसकी मदद फरमा। क़यामत के दिन हमें अहलुल कुरान में शामिल करना। या अल्लाह हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाना। या अल्लाह अपने अहलुल्लाह में शामिल करना। और या अल्लाह जिसने कभी भी दुआ के लिए कहा या अभी भी कहना चाहते हैं, आप अपनी रहमत से उनकी दुआएं कबूल फरमा लें और हमारी कमी कोताहियों से दरगुजर फरमा। और आइंदा के लिए हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन वखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। وفوض امري الى الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انت جل القران العظيم ربي قلبي ونور صدري وجلا حزني وذهاب غمي وهمي। या अल्लाह हमारी नस्लों को ज़ाया होने से बचा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को फिर वही अरूज और बुलंदियाँ अता फरमा जो हम देख चुके। या अल्लाह हमारी उम्मत का मुस्तकबिल रोशन कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।